हेलो
हेलो हेलो,
वॉइस ऑफ अमेरिका, आपको मेरी आवाज आ रही है?
जी मैंने बात करनी है जी, गाने की फरमाइश करनी है जी।
हेलो, आवाज आ रही है?
हेलो चैट बस्टर्स, एक गीत की फरमाइश है।
अस्सलाम वालेकुम, वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन से आप प्रोग्राम सुन रहे हैं चार्ट बस्टर्स। मैं हूं सादिया ज़ेब्रांजा और मेरे साथ प्रोड्यूसर हैं अंजुम हैरल गिल और इंजीनियर हैं जो गिल। आज के शो में हम बात करेंगे पाकिस्तान में हिफाजती कतरे पिलाने के रुझान से मुतालिक, कि क्या आज भी वालदैन कतरे पिलाने से पहलू तही करते हैं, क्या आज भी इससे जुड़े हुए गलत तसव्वुरात पर यकीन करते हैं। आप लोग हमें कॉल करते हैं, आप भी बताइए कि आपने बचपन में कतरे पिए थे, कतरे नहीं बल्कि हिफाजती टीके, क्या आपने हिफाजती टीके लगवाए थे और क्या आप अपने बच्चों को हिफाजती टीके लगवाते हैं, अगर नहीं तो क्यों। हमारे साथ प्रोग्राम में शरीक होंगे लाहौर से डॉक्टर फैसल सुल्तान। आपके जहन में इससे मुतालिक यानी हिफाजती टीकों या वैक्सीनेशन से मुतालिक अगर कोई सवाल है या कोई खदशा है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, हमारे प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं। हमारा नंबर है 08007778 9, ये हमारा टोल फ्री नंबर है आपके लैंडलाइन फ़ोन से, आपके मोबाइल से नहीं। तो आप हमें कॉल कीजिए और हमारे साथ डॉक्टर साहब भी शरीक होंगे। लेकिन इससे पहले कि हम बातचीत का सिलसिला शुरू करें, क्योंकि आपके पसंदीदा गीतों पर मुश्तमिल ये प्रोग्राम है, तो साईं जहूर की आवाज़ में आपका बहुत ही ज़्यादा फरमाइश थी इस गीत की, भारत से भी और पाकिस्तान से भी। तो आप सबकी पसंद का ये गीत सुनिए और उसके बाद आप हम आपकी कॉल्स लेंगे। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन से आप प्रोग्राम सुन रहे हैं चार्ट बस्टर्स। मैं हूं सादिया ज़ेब्रांजा और जैसे कि हमने जिक्र किया, इस वक्त हमें ज्वाइन किया है लाहौर से डॉक्टर फैसल सुल्तान ने। बहुत शुक्रिया डॉक्टर फैसल सुल्तान और अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम अस्सलाम जी।
डॉक्टर साहब, आपने जाहिर है खबरों में आ रहा होगा, आप जानते हैं कि अमेरिका जैसे तरक्की याफ्ता जो मुल्क है वहाँ पर भी जब 2000 में खसरे का बिल्कुल खात्मा हो गया तो इस साल 2019 में फिर से ये औद कर आया है और 21 मार्च तक 314 बच्चे जो हैं 314 केसेस इसके सामने आए हैं। तो आपसे ये जानना ज़रूरी, और इसकी वजह आप जानते हैं कि बहुत से वालिदैन ने वैक्सीनेशन नहीं करवाई अपने बच्चों की और वो समझते हैं कि इसकी कोई लॉजिक नहीं है कि बच्चों में अगर वो जरासीम मौजूद नहीं है तो हम वैक्सीनेशन के ज़रिए वो क्यों उनके जिस्म में दाखिल करें। तो आपसे ये जानना चाहूँगी, आप पाकिस्तान के रेफरेंस से भी बताइए कि कितना ज़रूरी है वैक्सीनेशन मुकम्मल करवाना।
जी बिल्कुल, बहुत ज़रूरी है, लेकिन पहले थोड़ा सा ये देखते हैं कि ये हो क्यों रहा है। मेरे ख्याल से एक ग्लोबली एक मूवमेंट चल पड़ी है जो बड़ी अनफॉर्चुनेट मूवमेंट है और बड़ी तकलीफदेह बात है कि वो बीमारियां जो मुकम्मल तौर पे प्रिवेंट की जा सकती हैं, जिनका खात्मा किया जा सकता है और जो खतरनाक साबित हो सकती हैं और उनको रोका जा सकता है, उसके बावजूद एक मिस इन्फॉर्मेशन और कंफ्यूजन की कैंपेन है जिसकी वजह से लोग अपने बच्चों को टीका नहीं लगवाते हिफाजती, और उसका नतीजा ये होता है कि अगर वो वबा फैलती है, उसका आउटब्रेक होता है, तो फिर उन बच्चों को वो डिजीज डेवलप होती है। अब इसमें कुछ सोशल मीडिया, कुछ मिस इन्फॉर्मेशन, कुछ नीम पढ़े लिखे लोग जो साइंस को मुकम्मल तौर पर पढ़ नहीं पाते उसको मिस इंटरप्रेट करते, ये वजूहत है। लेकिन जी, नतीजा ये है कि डेवलपिंग वर्ल्ड में भी और डेवलप्ड वर्ल्ड में भी ये एक 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 मनफी।
जी डॉक्टर साहब, आवाज आ रही है आपको? हेलो जी डॉक्टर फैसल, आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है? जी उनकी कॉल इस वक्त डिस्कनेक्ट हो गई है। हम कोशिश करेंगे दोबारा उनसे रابطہ करें और उनसे मजीद जानें इस बारे में, ना सिर्फ खसरा बल्कि और। जी पता चला है कि वो हमारे साथ हैं। डॉक्टर साहब आवाज आ रही है आपको?
जी बिल्कुल, मैं मुझे तो आपकी मुकम्मल आवाज
जी जी हमें हमारा रابطہ थोड़ा सा डिस्कनेक्ट हो गया था। तो डॉक्टर साहब ये बताइए, हम बाकी चीज़ों जितने भी अमराज हैं उनके बारे में बात करेंगे जिनकी वैक्सीनेशन होती है बचपन में बच्चों की। तो जैसे पोलियो है तो उसमें वो दायमी असर आप पे छोड़ता है, बाज केसेस में मौत भी वाकई हो जाती है, और भी आप खसरे के बारे में स्पेशली बताइए कि ये कितना शदीद होता है, किस तरह के असरात मुरतब करता है और जिंदगी को कितना खतरा लाहक होता है।
जी बिल्कुल, ये तमाम वो बीमारियां जिनके लिए वैक्सीन डेवलप की गई, आखिर वो उसकी बैकग्राउंड और वजह और तौजीह यही थी कि ये पोटेंशियली खतरनाक साबित हो सकते हैं। ये एक गलत फहमी या गलत ख्याल है कि ये हमेशा माइल्ड होती है। पोलियो तो आपने जैसे जिक्र किया कि क्रिपलिंग होता है, वो एक मुकम्मल और जिंदगी भर के लिए आपको एक डिसेबिलिटी दे सकता है, वो तो अपनी जगह। लेकिन इवन मीजल्स जैसी बीमारियां जो हैं ये माइल्ड तो हो सकती हैं खतरा जो है, लेकिन जब सीवियर हो तो इससे जान को भी खतरा हो सकता है, बच्चा अपनी जान खो भी सकता है और बड़े इसके लास्टिंग इफेक्ट्स भी हो सकते हैं अगर ये इसकी ज्यादा एग्रेसिव फॉर्म या ज्यादा इसकी जो बढ़ के अगर ये इन्फेक्शन करे तो ब्रेन के गिर्द इन्फेक्शन कर सकता है, दीगर ऑर्गन्स में कर सकता है, और जैसे मैंने जिक्र किया कि कभी इससे मौत भी वाकई हो सकती है। तो ये इतनी बिनाइन बीमारियां नहीं हैं कि इनको इग्नोर किया जाए और ये सोचा जाए कि कोई बात नहीं, हम इसका टीका नहीं लगवाएंगे अपने बच्चे।
और डॉक्टर साहब, जैसे बचपन में बच्चों को टीके लगाए जाते हैं और अगर कुछ वालदैन ने बच्चों को टीके नहीं लगवाए तो क्या बड़ी उम्र में अगर इन तमाम बीमारियों के टीके लगवाएं, वैक्सीनेशन करवाएं, तो वो उतनी ही इफेक्टिव है?
देखिए, आइडियल तो ये है कि उस वक्त हो जाए जब ये बचपन में मौका होता है वैक्सीनेशन का। उसकी दो वजह, एक तो ये कि जाहिर है बच्चों का एक्सपोजर यंग एज में बहुत होता है एक दूसरे को और बहुत सी बीमारियां होती भी बचपन में, तो जाहिर है वक्त से पहले ये तदाबीर करना ज्यादा अकलमंदी की बात है बजाय इसके कि बाद में करें। सो आइडियल तो यही है कि ये बचपन में जो इनका नॉर्मल स्केड्यूल है, जब आपका पीडियाट्रिशियन कहता है कि आपने ये टीके लगवाने हैं या ये कतरे फैलाने हैं पोलियो के केस में, तो वो आप उसी टाइम पे करवाएं। लेकिन अगर किसी वजह से ये रह गए हैं, मुमकिन है वालदैन को मौका नहीं मिला, भूल गए, मिस हो गया, तो उस सूरत में कम अज कम बाद में तो लगवा लेने चाहिए। तो कैचअप इम्यूनाइजेशन के भी पूरे स्केड्यूल मौजूद हैं, यानी अगर एन बचपन के दौरान नहीं ये टीके लगे तो बाद में भी लग सकते हैं
और उतने ही असर होता है उनका उतना ही।
जी असर तो बिल्कुल अच्छा होता है, सिर्फ ये है कि वो कुछ वक्त गुजर गया ना, एक बेवजह का रिस्क आपने ले लिया। मैं मिसाल देता हूँ, एक बच्चा है जिसको कि 5 साल की उम्र में या 1 साल की उम्र में या पैदाइश के फौरन बाद टीका लगना था, अब अगर वो उस वक्त नहीं लगा और आप 20 साल की उम्र में लगाएंगे तो वो 1 साल की उम्र से लेकर 20 साल की उम्र तक तो उसको रिस्क रहा ना।
जी जी,
तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि हमने उस वक्त बचाव करना है जब सबसे रिस्क बड़ा है उसके इन्फेक्शन के होने का।
डॉक्टर साहब, एक बात जो बहुत कही जाती है और खासतौर पर पाकिस्तान में ये कही जाती है कि खसरे का की वैक्सीनेशन करवाएं तो भी उसने होना ही होना होता है, एक दफा तो जिंदगी में हर बंदे को ये होता ही है, तो फिर क्या जरूरत है आपको वैक्सीनेशन की, तो क्या ये फैक्ट है?
नहीं, ऐसे नहीं है। देखिए, मसला ये है कि कोई भी वैक्सीनेशन 100% इफेक्टिव नहीं होती, यानी हम ये कहें कि कसम खाई जा सके कि अगर आपने खसरे का टीका लगवा लिया है तो क्या खसरा नहीं होगा, नहीं, कसमन नहीं हो सकता। ये वैक्सीन बहुत इफेक्टिव है, 99% से ज्यादा इफेक्टिव है, लेकिन बसा औकात कभी कभार ऐसे होता है कि बावजूद एक टीका लगने के खसरा हो सकता है। आमतौर पे वो माइल्ड होता है और वो उतना खतरनाक नहीं होता, और इसलिए ये कहना कि उसका कोई फायदा नहीं और ये तो कभी होना है, ये बिल्कुल गलत बात है। और मैं समझता हूँ कि ये बड़ी मिसलीडिंग बात है। उसकी वजह यह है कि कई दफा लोग कंफ्यूज कर देते हैं बात। मिसाल देता हूँ, अगर आपने खसरे का इंजेक्शन लगवाया तो जरूरी तो नहीं कि कोई और वायरल इन्फेक्शन जिसमें रैश हो सकती है वो ना होगी, हो सकता है हो, और कई दफा लोग इस चीज को मिक्सअप कर देते हैं कि जी हमने तो टीका लगाया था लेकिन फिर भी इन्फेक्शन हुई। वो मुमकिन है कि कोई मुख्तलिफ दीगर फर्क किस्म की वायरल इन्फेक्शन हुई हो। तो ज्यादा जो खतरनाक और रिकग्नाइज बीमारियां हैं और जिनके खिलाफ तदाबीर मौजूद हैं ये हिफाजती, उनको तो इग्नोर नहीं करना चाहिए।
डॉक्टर साहब, मुझे पता है आप किसी फंक्शन में हैं, आपने हमारे रिक्वेस्ट करने पे हमें थोड़ा टाइम दिया। आखिर में एक सवाल आपसे जरूर पूछना चाहूंगी कि जो आपके पास आते हैं, आजकल क्या रुझान है वालिदैन का, जब वालिदैन आते हैं तो उनके जहन में क्या खदशात हैं आजकल वैक्सीनेशन के बारे में, और आप कैसे उनको दूर करते हैं? क्या वाकई किसी के साथ ये जो जितने भी खदशे मौजूद हैं लोगों के जहनों में, इनमें कोई सच्चाई है किसी 1% भी?
मेरे ख्याल से जी ये लाखों में एक वाली बात है, शायद उससे भी कम में, यानी 1% तो बहुत बड़ा होता है, ये 1% का वन अशरे अशीर वाली बात हो गई, उससे भी कम।
अच्छा।
में कोई रिस्क होगा कि कभी किसी वैक्सीन का, लेकिन देखिए वो तो किसी भी दवा का, किसी भी इंटरवेंशन का 0.001% या उससे भी कम का खतरा हो सकता है। लेकिन आपने ये देखना है कि आपने अपने बच्चे को ज्यादा बड़ी बला से, ज्यादा लाइकलीहुड से, ज्यादा खतरनाक सिचुएशन से बचाना है, ये किसी एक इतने छोटे से अदाद शुमार के कंफ्यूजन में पड़ के और किसी से मिसगाइड होके अपने बच्चे को भी और उसके गिर्द वालों को भी खतरे में डालें। मैं समझता हूं कि ये बिल्कुल गलत रुझान है और इसको हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स को, लोगों को, डॉक्टर्स को, नर्सेस को, अपने मरीजों को और अपनी फैमिलीज को तालीम देने की और एजुकेट करने की जरूरत है।
डॉक्टर साहब, जाने से पहले आपने बात की रैशेज की, तो जैसे शुरू में यही होता है कि बच्चे के जिस्म पे सुर्ख किस्म के छोटे छोटे बनते हैं दाने, तो कौन सी ऐसी चीजें जिनको कंफ्यूज किया जा सकता है और वो कितना शदीद होता है कि हमें उसको खसरा समझना चाहिए और फिर उसको किस तरह से डील करना चाहिए?
जी बिल्कुल, देखिए एक तो ये है कि कई दफा इवन एक्सपीरियंस लोगों के लिए ये बताना एक से दूसरा मुश्किल होता है, लेकिन मीजल्स अगर हम खसरे की बात करें तो खसरे की जो रैश है ना, वो कोई उसकी ऐसी कैरेक्टरिस्टिक अलग से चीज नहीं, लेकिन अगर आप मुकम्मल पिक्चर को देखें, अक्सर औकात बच्चे को साथ खांसी भी होती है, आंखें सुर्ख होती हैं, कंजक्टिवाइटिस जिसको हम बोलते हैं, यानी जो इन्फेक्शन है वो आंखों में जाती है, तो रेडनेस, सुर्खी होती है आंखों की, खांसी या आंखों की सुर्खी, और उसके अलावा बड़ी डिफ्यूज सी रैश, यानी जिस्म भर पे रैश होती है, अक्सर औकात कानों के सामने से शुरू होती है लेकिन फिर बाकी सारे जिस्म पे भी आ जाती है, और खास तौर पे तेज बुखार होता है। तो अब जाहिर है ये जो वायरल इलनेसेज हैं इनमें कई दफा ऐसी कोई मुनफरद चीज नहीं होती कि आप दो टोक तौर पे कह सकें कि भाई ये है या दूसरा है, लेकिन मीजल्स डायग्नोज किया जा सकता है, लेकिन जाहिर है अब ब्लड टेस्ट भी मौजूद है। अब बहुत से ऐसी दीगर वायरल इन्फेक्शन हैं जो रैशेज कॉज करती हैं, और कुछ बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी ऐसी हैं जो रैशेज कॉज करती हैं, तो ये कई दफा कंफ्यूज कर सकते हैं, और बेहतर पॉलिसी ऐसी सूरत में यही है कि किसी अच्छे पीडियाट्रिशियन को, बच्चों के स्पेशलिस्ट को दिखाया जाए।
सही, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच, आपने हमारे सुनने वाले को इतनी इन्फॉर्मेशन दी, बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज। जी सामेईन, आपने डॉक्टर साहब की बातें सुनी है, अब आपने हमें बताना है जो क्वेश्चन हमने बिल्कुल शुरू में आपसे किया था कि क्या आपने हिफाजती टीके लगवाए हैं और क्या आपने अपने बच्चों को हिफाजती टीके लगवाए हैं। इससे पहले कि हम अपने कॉलर्स की तरफ जाएं, आशिक खान खासखेली ने नवाबशाह से हमें एक रिक्वेस्ट भेजी हुई थी बहुत अरसे से, वो हमारे पास है, हम वो सुनवाएंगे, लेकिन बता दूं कि लाइन पे कौन कौन है, मेहर खालिद महमूद, अलादिता शाकिर, तारिक चुगताई, इनसे बात करेंगे वापस आके।
परेशान है रात भारी है, दिन परेशान है रात भारी है, जिंदगी जिंदगी है के फिर भी प्यारी है, क्या तमाशा है कब से जारी है, क्या तमाशा है कब से जारी है, जिंदगी है के फिर भी प्यारी है, दिन परेशान है।
वेलकम बैक। और मैं ये बताना तो भूल ही गई थी कि आशिक खान खास खेली ने और उनके जितने भी दोस्त हैं सिंधी रेडियो लिसनर्स क्लब के, उन्होंने ये गाना असद हसन को डेडिकेट किया है। तो अब वो तो शो सुन नहीं रहे, लेकिन मैं आपकी मोहब्बत उन तक ज़रूर पहुंचा दूंगी। अब बात करते हैं, काफ़ी देर से लाइन पर हमारे साथ हमारे कॉलर्स मौजूद हैं, मेहर खालिद महमूद रहीम यार खान से। अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम सलाम मेरी मोहतरम बहन।
जी खालिद महमूद साहब, आपकी जी जी
सर, मैं पोलियो के कतरे के बारे में बात करूंगा कि मेरी बेटी पैदा हुई थी 97 में, वो बाकायदगी से पोलियो के कतरे पीती रही। तो लोगों की सोच थी कि ये कतरे नहीं पीने चाहिए, ये बच्ची जब बड़ी होगी, इसकी शादी होगी तो ये बच्चे पैदा नहीं करे। माशाल्लाह अब उसकी एक एक साल की बेटी है। तो ये कतरे जो पोलियो के है ये बिल्कुल 100% दुरुस्त है, और जो टीके वगैरह या इंजेक्शन वगैरह होते हैं ये भी बिल्कुल 100% दुरुस्त है। बल्कि इतना मेरा एहतमाम होता था, जो टीमें आती थी कतरे पिलाने वाली, तो बहुत से बच्चे जो मैं अपने घर में इकट्ठे करवा लेता था ताकि किसी का बच्चा
रह न जाए,
मजदूर होने से बच जाए।
बिल्कुल। और मेयर खालिद महमूद साहब, बहुत अच्छी बात है, और हमें अपनी कम्युनिटी के लिए इसी तरह का काम करना चाहिए, और बल्कि लोगों को बताना चाहिए।
मैं सिस्टर पूरे पाकिस्तान को यही मैसेज दूंगा कि पोलियो के कतरे ये बिल्कुल 100% दुरुस्त हैं, ये बच्चों को पिलाने चाहिए, उम्र भर की माजूरी से बचाते हैं। ये जो हुकूमत होती है या एनजीओ होती हैं, ये हमारे ही फायदे के लिए होती हैं, हमें इनके साथ बहुत तावन करना चाहिए।
बहुत जबरदस्त। अच्छा ये बताएं ना, मेरी बात भी तो सुने ना।
जी जी सर,
आप ये बताएं, आपकी जो लेफ्ट, क्या कहते हैं उसको, बायां दायां जो लेफ्ट साइड वाला बाजू है, उस पे आपका एक निशान बना हुआ है ना, आपने करवाई थी वैक्सीनेशन?
सिस्टर मैंने भी करवाई थी, और मेरे खानदान, हम तो सिस्टर माशाल्लाह, एक रिक्वेस्ट छोटी सी करूंगा कि थोड़ी सी ये मेरी रिक्वेस्ट है तमाम पाकिस्तान भाइयों से कि मेरी भी मैं तालीम याफ्ता हूँ, मेरी बीवी भी तालीम याफ्ता है, कि थोड़ा सा कुछ ना कुछ घर में तालीम होना जरूरी है।
बिल्कुल जरूरी है। थोड़ा बहुत नहीं, बहुत ज्यादा होना
अगर
जरूरी।
माँ बाप तालीम याफ्ता होगा तो उनके बच्चे जो है वो भी तालीम याफ्ता इसलिए बनेंगे। लाजमी नहीं है कि आप तालीम हासिल करके कोई जॉब वगैरह या कोई मुलाजमत स्टार्ट कर ले। पढ़ा लिखा होना ये बहुत फायदेमंद होता है।
बहुत जबरदस्त मेहर खालिद महमूद साहब, थैंक यू सो मच। बिल्कुल एग्जैक्टली, आपने बड़ी अच्छी मिसाल दी है, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अल्लाह देता शाकिर साहब से बात करते हैं जो बड़े ही एक्टिव हैं अपनी कम्युनिटी में, उनसे पूछते हैं कि वो क्या करते रहते हैं। जी अल्लाह देता शाकिर साहब,
बहुत शुक्रिया मैडम कि आपने हमें एक्टिव बना दिया है। असल में आपके प्रोग्राम ने ही हमें एक्टिव बना दिया है।
अच्छा,
तो
बहुत अच्छी बात।
ज्यादा एक्टिव हुए हैं कि मेरे कजन मोहम्मद अकरम संगा की आज शादी है, तो कल उनकी बारात वापस आ गई थी। अभी हमारे
वापस क्यों आ गए?
और हमारे कजन जो है बार मोहम्मद अकरम, वो भी आपका प्रोग्राम सुन रहे हैं, तो आपसे एक सॉन्ग की भी हम फरमाइश जरूर करेंगे। आज ही के प्रोग्राम में हो जाए तो सोने पे तो आ जाए। और मेरे साथ दोस्त होते हैं अंसर भट्टी साहब लाहौर से आए हुए हैं, वो भी आपका प्रोग्राम सुन रहे हैं। गुरमानी साहब हैं और बहुत सारे, रमजान कैसर मसूरी, साबर कुमार, बहुत सारे लिसनर हैं हमारे इंटरनेशनल रेडियो फोरम के,
सबको वेलकम करते हैं।
खान महू साहब बात कर रहे थे तो इस टॉपिक के पे हम इंशाल्लाह अगले नेक्स्ट वीक बात करेंगे। तो
अच्छा।
क्योंकि आज हमें कुछ ये हमारा ये आज टॉपिक नहीं है, तो हम तो आपकी आज बातें सुनेंगे, आपका शो सुनेंगे। तो आज ही कोशिश करना कि सॉन्ग जो है ना हमारे भाई अकरम संगा का नाम लगवा देना।
कौन से वाला?
जो आपकी मर्जी, जो
ठीक है।
मुझे याद है आपने पिछले जुमे भी वो हाजी मोहम्मद संगा की शादी से पहले आपने याद रखा, उस वक्त आपने हमारी भाभी के नाम किया था और फिर हाजी मोहम्मद संगा के नाम पिछले प्रोग्राम में किया था, हम उस पर भी आपका शुक्रिया।
बहुत शुक्रिया, जबरदस्त। और
आज ही का प्रोग्राम में होना चाहिए जो आपको अच्छा लगे, क्योंकि ये मौसीकी जो है ना मोहब्बत की ज़बान होती है।
बिल्कुल ठीक है, लेकिन आपका ये जुमला था ना, उसने एक लम्हे के लिए मुझे डरा दिया कि उसकी बारात वापस आ गई। बारात वापस आना तो हम तब कहते हैं जब बारात खाली हाथ वापस आती है।
तो क्या करते हैं, क्योंकि कल फिर थी तो आज
अच्छा
था, तो आज हम बल्कि हम इजी हो के प्रोग्राम सुन रहे हैं।
जबरदस्त, बहुत शुक्रिया अल्लाह देता साहब। गाना मैं कोशिश करूंगी जरूर चला दूं, नहीं तो अगले जुमे को तो जरूर इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया। तारिक चुगताई साहब से बात करते हैं चूनिया कसूर से। अस्सलाम वालेकुम।
क्या हाल है? सब ठीक है,
अल्लाह का शुक्र है। बड़े दिनों बाद आपने फोन किया।
नहीं जी, ट्राइयां तो मेरी जारी रहेंगी।
अच्छा, तो आप बताइए आप क्या कहेंगे हिफाजती टीकों के बारे में? हम बात कर रहे थे कि बच्चों को पिलाने चाहिए।
जी ये तो बच्चों को लाजमी पिलाने चाहिए, बल्कि इधर तो है कि मैं तो बच्चों को पकड़ पकड़ कर वो जो आती है ना टीमें, तो टॉफियां लेता हूँ और बच्चे जाते हैं, माएं भी उनकी खुश होती हैं,
बहनें
होती हैं। और मुझे वो वाकया याद है ना जी, जब मुझे लटा कर उन्होंने स्कूल पे वो आप पूछ रही थी ना कि बाजू पे लगा हुआ है टीका। हाँ, मैंने अभी चेक किया, मुझे लगा हुआ था
वो एक इकट्ठा 500 होता था।
हाँ, वही तो मैंने छीनी थी वो जब मुझे मार पड़ी थी स्कूल से, वो मैंने छीनी, वो था नहीं थी वो पुराने वक्त की। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर शुक्र है कि कोई पुलिस वगैरह की टीमें नहीं होती, और माएं मेरी बहनें बड़ी खुशी से वो लगाती हैं वो टीके वैक्सीनेशन। तो मुझे, हमें तो तल्ख तजर्बा ना हमारी फैमिली को, मेरे भाई बहुत पढ़े लिखे हैं
जी जी।
तो उनका एक बाजू और एक टांग, वो चलते हैं वैसे लेकिन थोड़ा सा महसूस होता है, वो पोलियो की वजह से
थोड़ा सा, यानी वो माइनर था उनको।
हाँ, माइनर सा है, लेकिन ये है कि वो इंग्लिश लिटरेचर में उन्होंने मास्टर किया, वो अब भी जॉब में है, लेकिन वो चलते हैं ना तो थोड़ा सा महसूस होता है, ये कसक रहता है मुझे।
नहीं, और एक बहुत बड़ी तादाद है तारिक चुगताई साहब जो बहुत बाशऊर हो गए हैं, लोग बहुत समझ आ गई है, कुछ सोशल मीडिया का इसमें हाथ है, कुछ जो मुख्तलिफ चैनल्स हैं, रेडियो हैं, टीवी हैं, तो लोगों में बहुत शऊर आ गया है। मैंने ये देखा है कि अब पेरेंट्स जो हैं वो पिलाते हैं कतरे भी और फासली टीके भी लगवाते हैं, लेकिन फिर भी एक तादाद ऐसी है जो अभी भी जिनके जहनों में खदशात होते हैं। तो जैसे आपने सुना कि जो हमें कॉल आई थी मेहर खालिद महमूद साहब की, तो वो बता रहे थे कि वो हमेशा ही पोलियो के कतरे पिलाते थे और ये सबसे पहला एक गलत तसव्वुर था لوگوں کے ذہنوں میں کہ اس سے کوئی فرٹیلیٹی پہ اثر پڑتا ہے, تو انہوں نے جیسے کہ آپ کو بتایا, تو اب بہت سے خدشات ایسے ہیں جو بالکل ماضی کا حصہ ہو گئے ہیں, اب لوگوں کو پتہ چل گیا ہے کہ ان کے کتنے زیادہ فوائد ہیں اور زندگی اور صحت کے لیے کتنے ضروری ہیں. تو بہت شکریہ آپ جیسے لوگوں کا جو اپنی کمیونٹی میں ان چیزوں کا خیال رکھتے ہیں. تھینک یو سو مچ, اور آپ کے لیے ایک گیت ہم چلاتے ہیں اسی خوشی میں, ٹھیک ہے؟ جی, اور یہ فرمائش انجم نے کہا ہے کہ طارق چوتائی صاحب کے لیے ہم گیت چلائیں گے, تو سنیے, بہت شکریہ, خدا حافظ, اور اپنے پسند کا گیت سنیے.
پائل میں گیت ہے چم چم کے, پائل میں گیت ہے چم چم کے, تو لاکھ چلے ری گوری تھم تھم کے, پائل میں گیت ہے چم چم کے, تو لاکھ چلے ری گوری تھم تھم کے, پائل میں گیت ہے چم چم کے.
واشنگٹن کی اردو سروس سے آپ سن رہے ہیں اپنا فیورٹ میوزک شو چارٹ بسٹرز, میں ہوں سعدیہ زبرانجا, میرے ساتھ پروڈیوسر ہیں انجم ہیرل گل, اور اب شامل کرتے ہیں آپ کے کچھ پیغامات کو. जुनैद खटक ने करक से लिखा है कि आप अरीब खान को इनवाइट कीजिए, तो मैं कोशिश करूंगी अरीब को अपने प्रोग्राम में बुलाने की, बहुत शुक्रिया। सलीम अली मिनहास पूंछ से लिखते हैं कि सादिया सिस्टर, मैं भी आपका प्रोग्राम सुन रहा हूँ, मैं भी आपके साथ हूँ, मेरे लिए भी कोई गीत प्ले कर दें। तो बिल्कुल सलीम, आपके मैसेज हमें मिलते रहते हैं, बहुत शुक्रिया, हम आप सबको याद भी रखते हैं। इफ्तिहार साहब ने सबको सलाम कहा और लिखा है कि अल्लाह सबको खुश रखिए। इफ्तिहार साहब, आपने बताया इन फूलों की कोई तस्वीर तो भेजी नहीं आपने, कोई नई अपनी दुकान के फूल हार कुछ भी तो नहीं भेजा आपने, बाहर आ गई है, अब तो भेजने चाहिए ना आपको। लिखते हैं कि मैं 2000 से बाकायदा वॉइस ऑफ अमेरिका का लिसनर हूं, बहुत शुक्रिया। सज्जाद खान पिशावर से लिखते हैं कि हम आपके बहुत बड़े फैन हैं, बहुत पहले से आपके सब शोज सुनते हैं और मेरे अबू खास तौर पर आपके बहुत 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 परिस्तार हैं, और उनका नाम है खान बहादुर, उनका नाम ज़रूर लेना बाजी। तो बिल्कुल ना सिर्फ उनका नाम खान बहादुर साहब का हमने लिया, बल्कि हम बहुत ही ज़्यादा शुक्रगुजार हैं कि आप लोगों को हमारे शोज़ इतने पसंद आते हैं। आप अपनी राय भी हमें दीजिए, कौन सा शो में आप क्या सुनना चाहते हैं, क्या ऐसी बातें हैं, क्या ऐसे इशूज़ हैं जिन पर आप चाहते हैं कि हम बात करें, तो आप ज़रूर हमें बताइए। जैसे आज हमने खसरे पर बात की कि यहाँ पर वो एक दफ़ा फिर आउट कर आया है कि पाकिस्तान में लोग इसके बारे में क्या सोचते हैं, उनको कितना पता है, कितने आगाह हैं। तो इस तरह से अगर कोई भी आपके जहन में सवाल है, बात है, तो आप हमें लिख भेजिए। अमजद नदीम घल्लू भक्कर से लिखते हैं कि पठाने खान की बरसी थी, उस रेफरेंस में मैंने एक गीत कहा था, तो उस रेफरेंस में गीत हम लाए हैं अपने साथ। टाइम दुआ करें वक्त मिल जाए तो हम जरूर प्ले करेंगे। अमजद नदीम साहब, मेरा क्या होता है सलाम बाजी, मेरा सोच से बात, अच्छा इन्होंने उर्दू में ऐसे लिखा कि वो सारा कट गया, तो मुझे समझ नहीं आ रही क्या लिखा है। कहते हैं मैं सोचता रहता हूँ तो बाज़ दफ़ा मेरा बीपी बढ़ जाता है, ऐसी बातें नहीं सोचा करें जिनसे बीपी बढ़ जाता है। अमजद नदीम साहब, पीर जाफर ने भारत के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर से पैगाम भेजा है कि मैंने इससे पहले भी एक फरमाइश की थी जो पूरी नहीं हुई, आप प्लीज़ मेरी लिए एक गज़ल प्ले कर दें। तो पीर जाफर साहब, मुझे लगता है पहली दफ़ा आपने चार्ट बस्टर्स के पेज पर मैसेज किया है, आपका जो पसंदीदा गीत है मैंने नोट कर लिया है, कोशिश करूँगी कि मैं आज उसे प्ले कर दूँ। आप सुनते रहिए और बताइए कि कैसा लगता है आपको हमारा शो। और इससे पहले कि अगले गीत की तरफ चलें, इरशाद चंचन साहब का मैसेज पढ़ देते हैं, जिन्होंने सिंध से लिखा है कि सादिया बाजी आपकी आवाज़ और अंदाज़ ज़िंदगी से भरपूर हैं, फरहत और ताजगी का एहसास होता है, लिखते हैं सिंधी का गीत भी सुना दें। तारीफ़ का शुक्रिया। और सिंधी का गीत मैंने कोशिश की थी कि कोई अच्छा सा सिंधी का गीत मुझे मिल जाए, अच्छे से मतलब ये है कि जिसको मैं भी थोड़ा सा जानती हूँ और मुझे पता हो कि ये थोड़ा पॉपुलर है, मुझे कोई ऐसा गीत अभी तो नज़र नहीं आया लाइब्रेरी में, मैं नेक्स्ट फ्राइडे को फिर कोशिश करूँगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का। और चलते हैं अगली फरमाइश, अभी जिक्र हो ही रहा था अमजद नदीम का, भक्कर से उन्होंने फरमाइश की थी, तो चलिए आपने काफी दिन पहले की ये फरमाइश की हुई थी, आज पूरी किए देते हैं।
मेरा इश्क हुई तू, मेरा यार हुई तू, मेरा इश्क हुई तू, मेरा यार हुई तू, मेरा दीन हुई तू, ईमान हुई तू, मेरा दीन हुई तू, ईमान हुई तू, मेरा जिस्म हुई तू, मेरा रूह हुई तू, मेरा कल्ब हुई तू, जिंद जान हुई तू, मेरा काबा किबला मस्जिद नबी साहब ते कुरान तू तू मेरा इश्क तू, तू ईमान तू, मेरा जिस्म मस्जिद मिंबर वो साहब दे कुरान भी तू, मैं फल फरीदे हज ज़काना सूम सलात अदा भी तू,
वेलकम बैक वॉइस ऑफ अमेरिका वॉशिंगटन की ये उर्दू सर्विस है जहाँ से आप अपना पसंदीदा प्रोग्राम सुन रहे हैं चार्ट बस्टर्स. मैं हूँ सादिया जेवरांझा, मेरे साथ प्रोड्यूसर हैं अंजुम हैरल गिल और हमें कॉल की थी विहाड़ी से रिटायर्ड टीचर हैं असलम वली शाह रिजवी साहब, लेकिन उनकी कॉल ड्रॉप हो गई है. हम तो बहुत खुश हुए थे कि आज एक नए कॉलर का इजाफा हो गया है. आप फिर से कोशिश कीजिए असलम वली साहब, हम उम्मीद करते हैं कि आपकी कॉल मिल जाएगी. तब तक बात करेंगे डॉक्टर मोहम्मद आजम से जिन्होंने खुशाब से कॉल की है. अस्सलाम वालेकुम. हेलो हेलो डॉक्टर साहब, डॉक्टर मोहम्मद आजम. अच्छा आवाज़ आ रही है आपको. जी वालेकुम सलाम,
खुशामदीद कहता हूँ भाई जी आपको दोबारा प्रोग्राम में.
बहुत शुक्रिया, थैंक यू.
बड़ी खुशी हो रही है. बहरहाल ये एक बात है कि आप खुशाब का ढोडा नहीं खाने के लिए मैं इंतजार करता रहा.
अच्छा चलिए मैं ढोडा खाने के लिए स्पेशल आ जाऊंगी. खुशाब तो आना ही पड़ेगा.
हम फिर देख भेजेंगे आपका. आपने
ठीक है, बहुत शुक्रिया.
कल आपका माना था हमारे पास, हम आपको जरूर खिलाएंगे. ये बात है आप
बिल्कुल सही है डॉक्टर साहब.
आपने कहा था कि टीके हमने बिल्कुल बचपन में लगवाए हैं.
जी जी.
और वाले साहब हमें स्कूल से बुलवा कर ले आते थे और सुबह एक आदमी जाता था वो भी डॉक्टर थे और उन्होंने हमें टीके सुबह लगवाए और हमारे वो किसान में भी बने अभी भी है.
क्या बात है. तो डॉक्टर साहब वो कौन लोग हैं जो नहीं लगवाते? मुझे तो कोई बंदा ऐसा मिला ही नहीं
तो
जिसने कहा.
जहन लोग होते हैं, अनपढ़ लोग होते हैं जिन्हें आगे का न पता न पीछे का. ओ ये नहीं लगवाना है, बच्चे मर जाएंगे. हालांकि इस चीज की कदर तो तब होती है जब इसको खरीद कर ले आते. उस वक्त पता चलता था चलता है ये कैसी चीज है और मुफ्त में जो चीज मिलती है उसकी तो कदर भी बाजी नहीं होती है.
बहुत शुक्रिया डॉक्टर मोहम्मद आजम साहब, थैंक यू सो मच.
कुछ दोस्त हैं
जल्दी.
मेरे साथ हैं डॉक्टर शरफ साहब, मलिक रमजान है, अंकल गुलाम मोहम्मद है, गौज़ मोहम्मद, सालिम मोहम्मद फरज शेर और शेरबाज भुट्टे. और मैं सलाम देना चाहता हूँ
जी जरूर जल्दी.
साहब गुलाम अब्बास साहब, सफीर मलिक साहब हैं, नासिर भाई हैं, डॉक्टर सफर इकबाल लुड़का साहब हैं, खालिद बन्नाजी और आपकी तमाम टीम को सलाम और सालिम रमीज साहब को
थैंक यू. आपका सलाम पहुँचा दिया जाएगा. थैंक यू सो मच. और जुबैदा चांडियो ने कॉल की है खैरपुर से. अस्सलाम वालेकुम जुबैदा.
अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप?
मैं बिल्कुल ठीक हूँ. आपने बड़े दिनों बाद कॉल की.
क्या करूँ, कॉल लगती नहीं तो कहा जाऊँ. आपकी कोशिश तो बहुत करती हूँ लेकिन कॉल लगती
बस
नहीं.
कहीं ना जाए.
मैं वैसे ने कंटिया वाले से आपका प्रोग्राम सुन रही हूँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है.
अच्छा.
और जिदा साहब ने बात की है वैक्सीन के हवाले से कि दूसरे के हवाले से खस्ता वैक्सीन के बाद नहीं निकलता, तो मैं खुद वैक्सीन करती हूँ पोलियो के हवाले से. पोलियो भी मैं करती हूँ लेकिन आज जो मेडिसिन के हवाले से मैं बात करूंगी.
बिल्कुल.
कि वैक्सीनेशन यहाँ के लोग बहुत कम करवाते हैं क्योंकि उनको डर लगता है कि भाई दर्द होगा, बच्चा बीमार हो जाएगा, उसको बुखार होगा. जब खसरे का टीका हम लगवाते हैं तो उसके बाद भी खसरा बिल्कुल निकलता है पर कम सूरत में निकलता है.
यही बात डॉक्टर साहब ने की कि उसके एक हल्का सा जी बिल्कुल माइनर सा अटैक अगर होता भी है तो माइनर.
ये एक वैक्सीन पहले आपने कहा ना कि बड़े बड़े हमारे बाजू पे भी दाग होते हैं कि भाई ये वैक्सीन का है, पहले लोग भी करवाते थे शौक से करवाते थे. आज जितना शोर आया है और जितना शोर फैला है लेकिन लोग उतने बेशोर होते जा रहे हैं पाकिस्तान में, खास कर मैं ये देख रही हूँ अपनी सिंध के हवाले से बात करूंगी कि हम जहाँ भी जाते हैं लोग टाउन बहुत कम करते हैं।
अच्छा,
और कोशिश यही होती है कि हाँ
तो सुबैदा क्या कहते हैं, सिर्फ दर्द की वजह से? दर्द तो कोई ऐसी वजह नहीं है, दर्द तो हर टीके में ही लगता है।
नहीं नहीं नहीं, उनके उनके जहन में बहुत सारे बातें होती हैं, वो ये कि भाई बच्चा बीमार हो जाएगा उसकी टांग में सूजन हो जाती है, या फिर जब बच्चा बड़ा होगा लड़की या लड़का तो वो माँ बाप नहीं बन सकते, या फिर ये होता है कि इस्लाम में ये चीज ना जाए से, बहुत सारे कायदे होते हैं, बहुत सारी बातें हैं जिनको फेस करना हमारे लिए बहुत मुश्किल होता है। कोशिश यही है कि हम वैक्सीनेशन करवाएं, ये जो हमारी हुकूमत दे रही है हम लोगों तक पहुंचाएं, अब लोगों का काम है कि वो इस फायदा उठाएं।
तो जुबैदा आप क्या करती हैं जब पेरेंट्स इस तरह से थोड़ा सा होते हैं, रिलक्टेंट होते हैं, तो आप क्या करती हैं?
कोशिश करती हूँ कि उनको हम गाइड करें, मोहब्बत से प्यार से समझाते हैं, कोई मानता है कोई नहीं मानता तो कोई कम्युनिटी का बड़ा होता है उनसे कहते हैं, अगर मौलवियों की बात आती है तो हम मौलवियों से रब्ता करते हैं, वो उनको समझाते हैं, या फिर कोई ऐसा बंदा या घर में जिनका बड़ा हो या कोई औरत या कोई बीवी, चलो शौहर बीवी की बात मानता है, बीवी शौहर की मानती है या फिर माँ की बात मानी जाती है, तो हम इस तरह कोशिश करते हैं उनकी बात मानी जाए और मनवाते हैं, कोशिश होती है, एक दफा नहीं दूसरी दफा जाते हैं फिर तीसरी दफा जाते हैं।
बहुत अच्छी बात की ज़ुबैदा, ये तो बहुत ही अच्छा काम है, बल्कि आप सिर्फ यही नहीं आप और भी बहुत से काम करती हैं, आप बच्चों को पढ़ाती भी हैं और भी कई काम करती हैं।
बिल्कुल बिल्कुल, ये भी काम करती हूँ और मैं कोशिश करती हूँ छोटी छोटी लड़कियाँ जो नहीं पढ़ती तही इलाके में वो पढ़ें और थोड़ी सी तालीम हासिल करें, पांच जमाती क्यों ना, फिर उनको पढ़ना लिखना घर करा ना आ जाए।
बहुत जबरदस्त ज़ुबैदा, थैंक यू सो मच, बड़ी अच्छी बात।
और आज आज मेरे भाई की शादी है तो मैं अपने भाई को मुबारकबाद देना चाहती हूँ, असल भाई।
अच्छा, हमारी तरफ से भी शादी की मुबारकबाद
करती हूँ, थैंक यू। और थोड़ा सा कुछ गुनगुना भी कर नहीं आज में, बस आज यही कि मुबारकबाद। अच्छा। आपको मैं सलाम कहना चाहूंगी, मुझे बहुत अच्छी लगती है आपकी वॉइस, मुझे बहुत अच्छी लगती है, आप भी मुझे याद किया करें,
मैं करती हूँ याद, ठीक है, हम अब आपको और ज्यादा याद किया करें, ठीक है, आप इतने अच्छे काम करती हैं, हम आपको जरूर याद किया करेंगे, थैंक यू सो मच ज़ुबैदा, बहुत शुक्रिया, थैंक यू जी। और हमारे अगले कॉलर हैं सैयद हबीब हुसैन शाह रावलाकोट से, अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह व बरकातहू, बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है। तो मैंने भी टीका लगवाया था, वो असल में इंजेक्शन नहीं होता था, कोई दाग सा आज भी बाजू पे मौजूद है, कोई चार पांच नुक्ते पट्टे थे। तो प्रोग्राम आपका बहुत अच्छा चल रहा है, अंजुम भाई ने बहुत अच्छा इकबाल बानो का गाना सुनाया मुझे, मैं मुल्तान गया था तो इकबाल बानो की फोटो और पाटे खान की फोटो एक साथ लगी थी, अब याद नहीं पड़ रहा कि कहाँ पे थी। हाँ, तो ये इकबाल बानो बुनियादी तौर पर हिंदुस्तानी पंजाब की थी मेरे ख्याल में,
नहीं अब याद करें ना,
अच्छा गाना गा।
अब हमें मशकूक किस्म के जुमले बोल के तो हमें आप ऐसे ही छोड़ देते हैं, आप जरा यकीन से हमें बताया करें कौन क्या करता था क्या नहीं, आप हमें बड़ी इन्फॉर्मेशन देते
यकीन से, ये उधर की थी वहाँ से माइग्रेटी थी।
अच्छा ठीक है।
ये वहीं से थी, तो मेरा आज था, अब वो पता नहीं गाना आज आया कि नहीं, दुनिया बदल रही है आंसू बहाने वाले।
मैं ना जब भी सुनती हूँ ना मेरे ऊपर एक अजीब सा डिप्रेशन हो जाता है, इतना दुखी गाना, आप मुझे नहीं पता, आज आप फरमाइश करें किसी बहुत ही खुश खुश और जरा पुरुमीद इस तरह के गाने की, जरा बताएं ना, जरा नया गाना सुने।
फिर मैं आपको अगले जुमे को सुना दूं, गालिबन 56 में एक गाना चला था बरसात में हमसे मिले तुमसे मिले।
सुने अंजुम, कोई सजेशन आपको दे रहे हैं, अंजुम फिर से बताएं।
जी 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 जी,
वो कह रहे हैं दुनिया किसी के प्यार में जन्नत से कम नहीं, ये गाना सुने
जन्नत से कम नहीं है, बिल्कुल। तो मैं भी असन ने गाया, बहुत अच्छा, मैं भी असन ने गाया या अहमद रिश्ते ने गाया,
तो अब आपके लिए हम ये प्ले करेंगे अगले जुमे को, ठीक है?
तो बहुत
बस कोई दुखी गाना नहीं चलाएंगे,
बहुत खुश रखे, मैं आपको बिल्कुल, बस इस तरह आदत हो गई है कि जिस तरह घर वाले हैं सारे,
हमें भी यही लगता
है, बहुत खुशियां दे अंजुम भाई को, आपको सब भाई,
थैंक यू, बहुत शुक्रिया आप लोगों का। अच्छा सैयद हबीब हुसैन शाह साहब, मैंने ये पूछा था अपनी अम्मी से कि ये क्या चीज होती थी, तो ये कोई एक होता था जिसमें सारे टीके एक साइडों पे वो मिला, कोई पांच सा होता था, तो एक ही दम लगाते थे सारे टीके जो है, पांच या सात, कितनी बीमारियां होती उन सब के, जी जी वो इकट्ठे लग जाते थे,
हाँ
ऐसा था बिल्कुल, तो वो ये चीज थी, बहुत शुक्रिया,
मुझे याद है, जरा जरा तुम्हें याद हो कि ना याद हो,
नहीं हमें तो बिल्कुल याद नहीं, हमें तो टीके लगे हैं, हम तो नए जमाने के लोग, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और अब हम अपने
नो मेंशन, वेलकम, गुड लाइफ एंड लॉन्ग लाइफ, हैप्पी लाइफ।
थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। और अब नसीर वानी की फरमाइश का गीत हम सुनवाते हैं। नसीर, आपके मैसेजेस आ रहे थे कि वो पेज, हाँ पेज की बात करना तो मैं भूल ही गई थी, असल में उस पेज पे इतनी ज़्यादा कॉल्स और इस तरह की इतनी ज़्यादा मैसेजेस आ गए कि उसको हैंडल करना बड़ा मुश्किल हो गया था, तो हम फिर इसी पेज पे स्विच कर गए हैं जिस पे हम पहले, तो वही facebook.com/chartbusters.voa, उसी पेज पे आप आएँ। मैं लिंक भी मैंने डाला है, आप वहाँ पर डायरेक्ट सुन भी सकते हैं, क्योंकि पहले आपको ये होता था कि लिंक ही नहीं मिलता हमें, तो मैंने उस पेज पर लिंक भी आपको पोस्ट किया है, आप उसको क्लिक कीजिए और प्रोग्राम आप सुन सकते हैं वहाँ पर, और मैसेजेस भी छोड़ सकते हैं। पीरजादा माजिद ने मैसेज छोड़ा है, बल्कि सलाम कहा है और पसंद किया है उसे, और फैसलाबाद से नजमा नौशाही ने हमें प्रोग्राम शुरू होते ही वेलकम किया और उन्होंने आप सबको सलाम भेजा, सलीम अली मिनहास उन्हें सलाम कह रहे हैं, तो बहुत शुक्रिया आप सबका। और नसीर वानी की फरमाइश का ये गीत सुनते हैं।
इकरार हो गया, हम सोचते ही रह गए और प्यार हो गया।
हो जाने कैसे कब कहां इकरार हो गया, हम सोचते ही रह गए।
वेलकम बैक, और अब आपके कुछ मैसेजेस। बिलाल पठान ने श्रीनगर से सबको सलाम कहा है, और पार्टियों जिला मीरपुर खास सिंध से गुलाम फकीर गुलाम हैदर संजरानी, चाचा सस्ता, इन्होंने कहा है कि हमारे नाम ज़रूर शामिल करें। तौसीफ शौकी और उनकी बहनें गुड्डी और छोटी दरवेश बाग बटन बारामूला जम्मू कश्मीर से लिखते हैं कि मैंने भी हिफाजती टीके लगवाए हैं, हम मेरी दोनों बहनों ने भी, और हमारी वालिदा सेहत के हवाले से बहुत ही ज़्यादा हसास हैं, तो घर घर जाकर यहाँ पर हिफाजती टीके लगवाए जाते हैं, बड़ी अच्छी बात है। और लिखते हैं कि आपका शो तो मेरा बहुत ही फेवरेट शो है, कुछ भी हो जाए मैं ज़रूर सुनता हूँ, थैंक यू सो मच। नसीरुद्दीन चित्राल से लिखते हैं कि मोहतरमा आपकी वापसी की खुशी हुई, मैं हर प्रोग्राम सुनता हूं और मैसेज भी भेजता हूं, लेकिन आप शामिल ही नहीं करती। कहां नसीर साहब, मैंने ना सिर्फ ये कि आपका मैसेज शामिल किया था, आपकी पसंद का चित्राली गीत भी सुनवाया था, उसका इसका मतलब है आप रोज नहीं सुनते, आप वैसे मुझे कह रहे हैं, तो आज भी मैंने शामिल किया है, तो आप ऐसे तो ना किया करें ना, शो जरूर सुना करें, तो कहीं ना कहीं शामिल होता है। और शहजाद मुजफ्फरगढ़ से लिखते हैं, आपका प्रोग्राम पहले की तरह ही बहुत अच्छा है, हम चाहते हैं पहले से भी अच्छा हो जाए, ठीक है, हमें सजेशन आप भेजा करें। सागरदीन मोहम्मद बलोच फ्रॉम शहर वर्कशॉप सांगड़ सिंध से लिखते हैं, प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं, हम आपके पुराने लिसनर हैं, काफ़ी दिनों बाद ज्वाइन किया है, तो हम आपको वेलकम करते हैं, थैंक यू सो मच। और ये कौन है जी, कश्मीर से गुलाम महीद्दीन डार लिखते हैं, सादिया जिब्रान झा, मुझे आपका शो बहुत ही पसंद है, अल्लाह आपको सलामत रखे। और एक मैसेज हमें आया है, हमारी फीडबैक की एक ईमेल एड्रेस है, वहाँ पर आया है, ये हैं समीर साहब, इन्होंने वहाँ मैसेज भेजा कि मैं वॉइस ऑफ अमेरिका का बहुत बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, रेडियो आपकी दुनिया 2003 से 2007 तक मैं बाकायदगी से सुनता था, और उस वक्त 672 किलोहर्ट्ज़ शॉर्ट वेव्स पर ये नशर हुआ करता था, तो प्लीज़ मुझे ये बताइए कि रेडियो आपकी दुनिया की ब्रॉडकास्ट जो है वो अब शॉर्ट वेव पर क्यों हमें सुनाई नहीं देती, दूसरा ये कि गीतों का एक प्रोग्राम हुआ करता था वो कहाँ गया, गीतों के प्रोग्राम को वापस आए हुए भी साल हो गया है समीर साहब, अब आप कहाँ होते हैं, आप मीडियम वेव्स 972 किलोहर्ट्ज़ पर हमारे प्रोग्राम सुन सकते हैं, क्योंकि शॉर्ट वेव का अब हमारे कुछ बूस्टर्स जो हैं वो वहाँ से हट गए हैं, इसलिए शॉर्ट वेव पे उस तरह से आप सुन नहीं पाते. आप मीडियम वेव पे सुने हमें 972 किलोहर्ट्ज़ पर. हर जुमे को रात 9 बजे हमारा म्यूज़िक का ये प्रोग्राम आपके लिए हम नशर करते हैं. तो हमें खुशी होगी अगर आप हमें ईमेल करें facebook.com/chartbusters VOA, तो हमें पता चलेगा कि आपने हमारा जो शोज़ हैं VOA के उर्दू सर्विस के वो दोबारा से सुनने शुरू कर दिए हैं. तो चलते हैं अगले गीत की तरफ. और पीर जाफ़र जिनका हमने जिक्र किया, उन्होंने कॉल की थी, नसीर वानी ने सुनना चाहा था एक गीत. तो नसीर, पहले आपकी पसंद का गीत हम आपको सुनवाते हैं. आपकी पसंद का सुनवाएं या भिंडर साहब की पसंद का? अब ये फैसला करें, भिंडर साहब की पसंद का सुनवाते हैं, इसलिए आप दोनों भी शो सुन रहे हैं. लेकिन भिंडर साहब की कॉल आई थी और ड्रॉप हो गई, और वो बहुत ज़्यादा हम सबको सलाम भी कह रहे थे और बात करना चाह रहे थे. तो भिंडर साहब, मुझे यकीन है आप सुन रहे हैं, आप सुनिए. बहुत पहले आखिरी दाओ फिल्म में लता जी का ये गीत आपने सुनना चाहा था.
कुछ बोलो तो सही.
मैं नहीं बोलती, आज से तुम्हारी मेरी कट्टी धोखेबाज कहीं थी.
बाबा, अरे भूल हो गई, हाथ जोड़ता हूँ, पर फरिश्ता तो हूँ नहीं मैं, आदमी हूँ आदमी. चलो झगड़ा छोड़ो, तुम्हें मेरी कसम.
वेलकम बैक, वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन की उर्दू सर्विस से आप सुन रहे थे हमारा ये प्रोग्राम चार्ट बस्टर्स. वक्त बिल्कुल ख़त्म होने को है, आपकी फरमाइशें बहुत ज़्यादा हैं. हम चाहते तो थे कि सभी की फरमाइशें पूरी हो जाएं, लेकिन क्या करें, नसीरुद्दीन साहब चित्राल से इन्होंने हमसे गिला किया है कि आप मैसेज भी शामिल नहीं करते और गीत भी. तो नसीरुद्दीन साहब, आपकी फरमाइश का एक और गीत मैं शामिल कर रही हूँ.
मैं पल दो पल का शायर हूँ, पल दो पल मेरी कहानी है, पल दो पल मेरी हस्ती है, पल दो पल मेरी जवानी है. मैं पल दो पल का शायर हूँ, मुझसे पहले कितने शायर आए और आकर चले गए, कुछ आहें भर कर लौट गए, कुछ नगमे गा कर चले गए. पल का शायर हूँ
जी. बिल्कुल वक्त खत्म हुआ, और आखिरी फरमाइश है, बल्कि फरमाइश नहीं है, ये मैं डेडिकेट करती हूँ, क्योंकि मुझे आज बहुत प्रोग्राम के शुरू में सलीम अली मिन्हास ने कहा बाजी को गाना मुझे डेडिकेट कर दें. तो सलीम, आपके लिए ये गीत डेडिकेट करती हूँ, सादिया ज़ेब रांझा को, अंजुम हेरल गिल को और जो गिल को. इजाज़त दीजिए, अगले जुमे को आपकी पसंद के गीतों के साथ और किसी बहुत ही अच्छे टॉपिक के साथ फिर मुलाकात होगी. तब तक के लिए खुदा
اس پروگرام میں جو نقطہائے نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے۔
یوکرین میں میریوپول کا شہر بحیرہ ایوز کے ساحل پر واقع ہے۔ قریب ہی روس کی پشپناہی میں جنگ کرنے والے باغیوں کے خلاف یوکرین کا اگلا مورچہ ہے۔ اس لڑائی نے ہر ایک کی زندگی کو متاثر کیا ہے، جبکہ جنگ کی وسعت کا خطرہ شہر پر منڈلا رہا ہے۔ ماسکو نے نومبر کے مہینے میں ایک بحری جنگ میں ٹھیک ساحلوں سے پرے یوکرین کے جن 24 فوجیوں کو پکڑنے کے بعد مستقل حراست میں رکھا ہوا ہے، اس کی وجہ سے یہ خطرہ اور بڑھ گیا ہے۔ ان چیلنجوں کے پیش نظر یہاں لوگ اتوار کے صدارتی انتخابات کو کس طرح دیکھتے ہیں، اس کے بارے میں وائس آف امریکہ کے نامہ نگار ہنری رجویل نے ایک رپورٹ مرتب کی ہے۔ علاقے میں دھند چھائی ہوئی ہے اور یوکرین کے فوجی تعیناتی کے منتظر ہیں۔ 5 سال سے میریوپول کے مکین مستقل تنازع کے خوف کے سائے میں ہیں۔ انتخابی مہم کے دوران مایوسی اور تھکاوٹ دیکھی جا سکتی ہے۔ ماریوپول کی ایک شہری تاتیانا کے الفاظ، مجھے کوئی بھی امیدوار پسند ہے لیکن اس وقت جو اقتدار میں ہے وہ نہیں۔ ہمیں امن کے لیے، اپنی معیشت کی ترقی کے لیے زیادہ مواقع درکار ہیں تاکہ ہم خوشحالی حاصل کر سکیں۔ الیگزینڈر سیدوروف اگلے ماہ سے چھٹی پر ہیں۔ وہ کہتے ہیں، میرے نزدیک سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ تمام بدعنوان لوگوں کو جیل میں ڈالا جائے۔ ایلینا کا ارادہ ہے کہ وہ کمیڈین والدیمیر زیلنسکی کو ووٹ دیں گی، جنہوں نے صدارتی امیدوار بننے کا اعلان کیا ہے۔ ان کے الفاظ، زیلنسکی کو کیوں ووٹ دینا چاہیے؟ اس لیے کہ یہ ایک نیا چہرہ ہے، اس لیے کہ اس کے ذاتی مفادات نہیں ہیں، وہ سیاست میں ملوث نہیں رہا۔ جنگ کا اگلا محاذ مشرق میں ٹھیک 6 کلومیٹر پرے ہے۔ ماریوپول سے سیدھی سڑک دینیتسک تک جاتی ہے۔ روس کی پشت پناہی میں لڑنے والے علیحدگی پسندوں کے قبضے والے علاقے تک پہنچنے سے پہلے یوکرین کی فوج کی متعدد چوکیاں ہیں۔ تنازع جب عروج پر تھا تو یوکرین کو یہ خطرہ تھا کہ یہ باغی فوجیں آگے بڑھتے ہوئے ماریوپول کے شہر پر قبضہ کرنے کی کوشش کریں گی۔ وہ خطرات اب ہو سکتا ہے کہ کم ہو گئے ہوں، لیکن جنگ روزمرہ کی زندگی اور اس علاقے کی معیشت پر بہت زیادہ اثرات مرتب کر رہی ہے۔ ماریوپول ڈون باس کے علاقے کے برآمدات کا ایک مرکز ہوا کرتا تھا۔ جنگ نے اس کی کانوں اور کارخانوں سے رابطہ منقطع کر دیا ہے۔ 2 بڑی سٹیل مل کے کارخانے اب بھی ماریوپول میں کام کر رہے ہیں، جو علاقے میں خوشحالی کا سبب ہیں، لیکن ساتھ ہی ان سے آلودگی بھی پیدا ہوتی ہے۔ قریب کی ہی بندرگاہ سے مصنوعات دنیا بھر میں برآمد کی جاتی ہیں۔ سن 2014 میں جب سے کرائمیا پر روس نے زبردستی قبضہ کیا ہے، آبنائے کرش کے راستے بحیرہ ایزوف تک رسائی پر روس کا کنٹرول ہے، اور اس طرح ماریوپول کی معیشت کی شہرک پر اس کی گرفت ہے۔ بندرگاہ کے ڈائریکٹر کا کہنا ہے کہ کاروبار کی مد میں ہر سال $75 لاکھ کا گھاٹا ہو رہا ہے۔ وہ کہتے ہیں،
اپریل سن 2018 سے روس نے تمام ایسے جہازوں کی تلاشی شروع کر رکھی ہے جو یوکرین کی بندرگاہوں تک پہنچنے کے لیے بحیرہ ایزوف میں داخل ہوتے ہیں. لوڈنگ کے بعد وہ ان کی دوبارہ اس وقت تلاشی لیتے ہیں جب وہ بحر اسود میں واپس آتے ہیں. اس طرح انتظار کی وجہ سے برآمد کرنے والے تاجروں پر اس کا زبردست مالی اثر پڑتا ہے. لیکن بعض علاقوں میں ترقی بھی ہوئی ہے. تاہم ماریوپول کے لوگ جنگ کے خاتمے کے لیے صورتحال میں تبدیلی کے خواہاں ہیں. انہیں یہ پتا ہے کہ جو کوئی بھی صدر ہو مشرق کی جانب سے خطرے کے خاتمے کا جلد کوئی امکان نظر نہیں آتا. رضی احمد رضوی کے لیے انجم ہیرلڈ گل, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں. پڑھیے, دیکھیے, سنیے, سیو کیجیے, فالو کیجیے. دور جانے کی ضرورت نہیں. وی او اے اردو کی اہم ترین خبریں اور بریکنگ نیوز کی لائیو سٹریمنگ ویڈیوز اب آپ کی ہتھیلی میں ہیں. آئی فون کے لیے خصوصی طور پر تیار کی گئی اردو وی او اے کی خصوصی ایپ ڈاؤن لوڈ کیجیے, جو ایپ سٹور پر بھی دستیاب ہے. وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں.
یہ وائس آف امریکہ ہے. آپ ہمارے پروگرام فیس بک پر facebook.com/voaurdu پر براہ راست دیکھ سکتے ہیں.